परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। आज से कुछ वर्षों पूर्व इसी रिसेप्शन में एक बाबा का ढाबा नाम का एक होटल स्टार्ट हुआ। जैसे उस होटल में, बाहर वाले के होटल में क्या होता है, नाचना, खाना, डांस करना, स्विमिंग करना, यहाँ भी सेम है। यहाँ भी हम ज्ञान डांस करते हैं, ज्ञान का भोजन करते हैं, ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों के कंचों से खेलते हैं, ज्ञान सागर में स्विमिंग भी करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ सिर्फ खिलाया जाता है, यहाँ पे खाना भी है और खिलाना भी है। यहाँ भोजन खाते खाते आज खिलाने का मौका मिला। ऐसे भोजन पकाना तो आता नहीं, लेकिन आज थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आज की मुरली का डेट है 5/12/89 और आज का टॉपिक है रूहानी प्रसन्नता। बाबा ने बोला आज उन बच्चों को देख रहे थे कि जो प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न भी दो प्रकार के हैं, एक क्षणभंगुर है, माना एक प्रसन्न है, और एक सदा प्रसन्न है, सदा की उसमें कमी है। सदा की कमी होने का मेन रीज़न यही बाबा ने बताया कि उसमें संपन्नता नहीं है। माना बाबा ने जो मेरे में शक्तियाँ भरा, गुण भरा, ज्ञान भरा, खजाना भरा, अनुभव भरा, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे देने वाला कौन है। जब हम वो भूल जाते हैं तो फिर अंदर से खालीपन रहता है, जिसके कारण वो प्रसन्नता गुम होती है। आज बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन का आधार ही है प्रसन्नता। इसमें एक प्रसंग मैंने देखा कि सन 1906 में तत्कालीन कोलकाता के प्रेसिडेंसी ऑफ कॉलेज में एक स्टूडेंट, उसमें एडमिशन लेने के लिए उसमें पहले एग्जाम होता है, एडमिशन से पहले प्री एग्जाम होता है, उसमें उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम का रिजल्ट जब घोषित हुआ तो उनका नाम नहीं घोषित हुआ, क्योंकि वहाँ का प्रिंसिपल यूरोपियन थे। तो उस बच्चा ने उनको बोला कि नम्रता पूर्वक बोला कि सर मेरा नाम तो नहीं आपने लिया। तो टीचर ने बोला कि यहाँ पे असफल विद्यार्थी का नाम घोषित नहीं होता है। तो स्टूडेंट बोला सर मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर मेरा आया होगा। टीचर को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो बोला कि तुझे 10 रुपये का फाइन लगेगा अभी। फिर उधर से कॉलेज का क्लर्क जो होता है वो भागते हुए आया और बोला सर ये वही विद्यार्थी है जो इस विद्यार्थी के, माना विद्यार्थियों के लिस्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर लाया है, लेकिन गलती से उनका नाम डालना मैं भूल गया, इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो फिर टीचर ने उस स्टूडेंट को देखता है, स्टूडेंट बड़ी प्रसन्नता और बड़ी प्रसन्नता से, माना एकदम खुशी से वो उनका चेहरा चमकता रहता है, खिल जाता है। वही स्टूडेंट आगे चल के भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और उनका जो परीक्षक है उनके कॉपी में लिखा कि परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा माना अधिक योग्य है। वहाँ तो स्थूल में देखा जाए कहीं हम भी तो ऐसा नहीं है। भगवान आता है, रोज पढ़ाता है, हम पढ़ के समा लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ा वो ही याद नहीं रहता है। जब कोई पूछे, कहने का भाव ये है कि पर बाबा ने जो सर्वशक्तियाँ गुण खजाने मेरे अंदर दिया है वो हम भूल जाते हैं। अभी हम उसको रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। बाबा ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी है, जैसे ज्ञान का है, गुणों का है, सत्ता का है। अभी बाहर में लोग क्या है कि कुछ पैसे खर्च करके प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्पकाल की प्रसन्नता तो होती है, क्योंकि अल्पकाल की प्राप्ति हुई तो अल्पकाल की प्रसन्नता होती है, फिर वो क्षणभंगुर है, वो तुरंत खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा हम बच्चों को सदा काल की प्राप्ति कराता है, संपूर्ण प्राप्ति कराता है, इसलिए सदा काल की प्रसन्नता रहती है। इसमें सदा हटाना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं और सामने से ओम शांति बोलते हैं तो वो भी मुस्कुरा के ओम शांति बोलते हैं, फिर बाद में साइड होते हैं तो उनका चेहरा जैसे कि लटक जाता है, माना उनको प्रसन्नता नहीं बोलेंगे। हाँ, वही सदा प्रसन्नता नहीं बोलेंगे। और आज बाबा ने बोला कि जब हम स्वयं से प्रसन्न रहेंगे तभी हम दूसरों से प्रसन्न रह सकेंगे, और जब हम दूसरों से प्रसन्न रहेंगे, स्वयं से प्रसन्न रहेंगे, तो हम सेवा में भी, सेवा से भी प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्नता एक हीरे के समान है, जो कहीं भी रहता है वो चमकता ही रहता है। जैसे कहते हैं ना, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। लोग हीरे का चमक, हीरे का मूल्य उनकी चमक के आधार से करते हैं, लेकिन वो हीरा राजा के सर पे रहो, उनके ताज में हो, वहाँ भी वो चमकता है, तो कब्र में उसके कब्र पे लगा दो वहाँ भी चमकता है, मंदिर में लगा दो वहाँ भी चमकता है, और बाहर फेंक दो वहाँ भी चमकता है। वो तो चमक रहा है लेकिन उसका वैल्यू कम नहीं होती है। हम उसकी चमक के आधार से उनका वैल्यू रखते हैं। जैसे दिखाते हैं ना कि कोई दीपक जलता है तो कहाँ भी जले रोशनी देता है, अगरबत्ती है कहाँ भी उसको जलाएंगे तो उससे एसेंसी मिलेगा, सुगंध ही मिलेगा। चाहे वो डस्टबिन में भी जलाएंगे वहाँ भी सुगंध, माना दुर्गंध को ख़त्म करके सुगंध फैला देगा। ठीक उसी तरह अपने अंदर भी अगरबत्ती जलाना है, ज्ञान की अगरबत्ती जलाना है, अनुभवों की अगरबत्ती जलाना है। बाबा ने बोला कि हम ऐसे फलदायक वृक्ष हैं, जैसे वो फलदायक वृक्ष में क्या दिखाते हैं कि उसके नीचे जाते हैं लोग, माना थकी हुई लोग जाते हैं और उनके शीतलता की छाया में वो कुछ देर विश्राम करते हैं, तो थोड़े समय के लिए उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन हम ऐसे वट वृक्ष के समान हैं जिसमें सर्व गुणों समाया हुआ है, सर्व शक्तियाँ समाये हुई है, हमारे पास कोई भी आए तो उसको जो चाहिए वो प्राप्ति हो, जो भी आए उसको शांति की, शीतलता की, शक्ति की, गुणों की, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति होनी चाहिए। हम भी तो एक बाबा से, बाबा के ज्ञान रूपी, ज्ञान के बीज बोया हुआ है मेरे में, तो वो भी तो वृक्ष का रूप धारण किया है ना, और उसमें अगर कोई उसके मेरे पास आके भी कोई अप्राप्त होके चला जाता है तो फिर ये सही नहीं है, इससे बाबा का नाम ही बदनाम होगा, मैं समझता हूँ ऐसा है। फिर बाबा ने बोला, रूहानी प्रसन्नता स्वयं को प्रसन्न करती है फिर अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न करती है। वो कैसे? जब हम अमृत वेले योग करते हैं, योग लगता है नहीं लगता है वो तो बाद में पता पड़ता है, लेकिन जब जब योग करके उठते हैं तो लगता है नहीं अंदर कुछ भरा है, कुछ नहीं बहुत कुछ भरा है, तभी चेहरा खिला खिला रहता है। मुझसे कई बार पूछे, भाई आप इतना खुश क्यों रहते हो? मुझे क्या मालूम मैं खुश क्यों रहता हूँ, आप बाबा से जाके पूछो। आज बाबा ने बोला कि प्रसन्न, आज बाबा ने देखा बच्चे भी प्रसन्नता में भी तीन प्रकार की क्वालिटी बना दी है, एक है स्वयं से प्रसन्न है तो दूसरों से प्रसन्न नहीं है। माना हम खुद में खुश है ना बस चलेगा, कोई कुछ भी है वो उसका पार्ट है, वो जाने, भले हमसे नाराज भी हो, लेकिन हमको खुश रहना है बस। लेकिन बाबा ने बोला आज नहीं, स्वयं से भी प्रसन्न रहना है, दूसरों से भी प्रसन्न रहना है, और जब हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो हम दूसरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे। तो जब हम स्वयं से भी प्रसन्न रहना है, दूसरों से भी प्रसन्न रहना है, और सेवा से भी प्रसन्न रहना है, जब ये तीनों क्वालिटी होगी ना, तो फिर बाप दादा हमसे प्रसन्न होंगे। फिर जब बाप दादा हमसे प्रसन्न होंगे तो सफलता है ही है, ऐसा मुरली बाबा ने बोला था। हाँ, कल मैं थोड़ा होपलेस हो रहा था, माना क्या सुनाएंगे हम, कभी कुछ सुनाया नहीं, माना एग्जाम तो बहुत दिया लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल कभी नहीं किया। तो मैं शाम को बोर्ड पे लिखा हुआ, कल संडे की मुरली पढ़ रहा था, उसमें बाबा बोला, बच्चे तू डरता क्यों है, सर्वशक्तिमान बाप तेरे साथ है, सफलता समाई हुई है, हुई पड़ी है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। तो मैं बोला चलो भाई, जो होगा वो बाप जाने, उनका सेवा है, उनका पार्ट है, वो हमको नहीं जाना। मैं समझता हूँ वही बोल रहे हैं। इस मुरली में बाबा ने बोला कि कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसको भगवान ने चुना है, मैं वो आत्मा हूँ जिसको भगवान पालना कर रहा है, भगवान खिला रहा है, भगवान मेरा बाप है, बाप बन के आया है, खुदा दोस्त बन के आया है, वो सर्व शक्तियां दे रहा है, सुबह सुबह जगाता भी है, शक्तियां भी भरता है, फिर ज्ञान स्नान भी कराता है, फिर ट्रैफिक कंट्रोल में भी हर घंटे शक्तियां भी भरता है, नुमे शाम भी शक्तियां भरता है, माना वो हमारा कितना केयर करता है, लेकिन फिर भी हम उनको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ज्ञान तो सुन रहे हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, अपने में समाते नहीं हैं। आज बाबा ने बोला कि बाप के हर एक बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी है, बाबा ने सभी को फुल वर्षे के अधिकारी बनाया, किसी को आधा, किसी को पूरा नहीं बनाया है। हाँ, बाबा ने पूरा दिया है, कोई आधा लिया है तो वो उसके ऊपर है, किसी को पूरा, किसी को आधा या एक चौथाई तो दिया नहीं है। और वो तब याद रहती है जब बाप से मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान या वर्षा हमको याद रहता है, कि बाबा ने हमें हर समय बोलता है, बच्चे तू विजयी है, तू मास्टर सर्वशक्तिवान है, और फिर भी हम भूल जाते हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। आज बाबा ने बोला, स्व से अप्रसन्न रहने के दो कारण बताया, एक दिल शिकस्त हो जाते हैं, और या फिर हम दूसरों की विशेषता देखते हैं ना, ये अच्छा क्लास कराते हैं, या फिर अच्छा योग करते हैं या कराते हैं, या फिर इनका शरीर बहुत अच्छा है, या इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, ये ज्ञान में बहुत आगे जा रहे हैं, या फिर स्थूल में भी आगे जाते हैं, तो उनसे ईर्ष्या होने लगती है। बाबा ने ये दो कारण बताया कि एक तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और एक ईर्ष्या होने लगती है, या भाग्य का हो या प्राप्ति का हो। लेकिन बाबा ने बोला कि दिल शिकस्त नहीं होना है, अगर मेरे में कमी है तो उसको भरते जाना है, आज नहीं तो कल भरेगा, लेकिन भरेगा जरूर। फिर बाबा ने बोला कि दूसरा है कि ईर्ष्या नहीं करना है, चलो कोई नहीं, वो आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, हमें उनसे सीखना है कि वो क्यों आगे बढ़ रहे, कहाँ से उनको क्या मिल रहा है जो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो देखेंगे ना, तो उससे फिर उस वो चीज़ें वो मेरे में आने लगती है, कि वो जो पॉइंट है ना, उसको अगर हम अपने में धारण कर सकते हैं तो आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हम अपने को चेक करना है कि मैं कहाँ पे कम पड़ रहा हूँ, माना क्यों कम हो रहा हूँ। बाबा ने सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, शक्तियाँ दिया है, अनुभव दिया है, लेकिन फिर भी कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं तो लीकेज होगा, उस लीकेज को भरना है। अगर वो लीकेज अगर भर देते हैं तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे, इसमें ईर्ष्या नहीं करना, ईर्ष्या है ना वो हमको कभी प्रसन्न नहीं होने देगा। आज बाबा ने बोला कि ईर्ष्या क्यों होती है, क्योंकि हम उनको देखते हैं वो आगे बढ़ रहा है, ये है। लेकिन बाबा ने बोला कि संगम युग का हर एक जो पार्ट है वो ड्रामा प्लान अनुसार चल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं में बाबा के जितने भी बच्चे हैं, चाहे नंबर वार है, माना नंबर वन है या फिर लास्ट मनके के हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। उस विशेषता को देखना है और उस विशेषता को ही पकड़ना है। जैसे किसी में खाना बनाने का है, किसी में गाने का है, किसी में नाटक करने का है, क्लास कराने का है, तो बाबा ने उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको सेवा दिया है। तो फिर उनको नहीं देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है कि बाबा इनको बनाने वाला कौन, बाबा है, और इनके अंदर जो विशेषता भरा है वो भरने वाला कौन, वो भी बाबा है। तो हम बाबा को क्यों ना पकड़े, वो जाएगा कहाँ, भाग के तो इधर ही आएगा। इस विशेषता के बारे में बाबा ने आगे बताया है कि हम किसी को याद करते हैं, सपोज दैट हम मधुबन को याद करते हैं, तो मधुबन को याद करते हैं तो मधुबन में जो बड़ी बड़ी दादी है, दीदी है, उनको भी याद करेंगे। अच्छा, दादी को याद करेंगे तो फिर भोली भंडारी को भी याद करेंगे। भोली भंडारी को बाबा हमेशा याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो विशेषता है खाना बनाने की और खिलाने की। ऐसा नहीं है कि वो सेवा से साइड हुई, या फिर वो ज्ञान योग नहीं करती थी, या फिर क्लास नहीं कराती थी। क्लास तो वो कराना न कराना बात की बात है, लेकिन ज्ञान योग में वो इतना पक्की थी कि वो खाना बनाती भी थी और बाबा को याद भी करती थी। इसलिए बाबा उनको हमेशा याद करते हैं। बाबा ने ऐसा भोली भंडारी को भी आज याद किया। फिर आज बाबा ने बोला कि हमको चांस मिलता है या फिर आगे बढ़ने का या फिर कुछ करने का, लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, या फिर आधे घंटे के बाद करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो वो क्या होता है, वो एक सेकंड हो या एक मिनट हो या एक घंटा हो, वो अगर छूट जाता है ना तो फिर हम छूट जाते हैं। उससे क्या होता है, फिर गाड़ी निकल जाती है और बाद में पछताते हैं, अरे वो समय था ना, वो काम कर लेते उस टाइम तो कितना अच्छा होता, आज ये पछताने का समय नहीं आता। बाबा ने बोला कि विशेषता को कार्य में लगाना है। जैसे किसी के अंदर विशेषता है उसको तो देखना ही है, ताकि हम उसके अंदर की बुराइयों को नहीं देख सकते, और अपने अंदर जो विशेषता है चाहे कुछ भी है उसको बाबा ने बोला इस यज्ञ में उसको यूज करना है। तो उससे क्या होगा, एक विशेषता से फिर एक जीरो और लगेगा तो 10 हो जाएगा, एक जीरो और लगेगा तो 100 हो जाएगा, इस तरह से वो विशेषता बढ़ती चली जाती है। इसलिए पहले तो हम कुछ नहीं थे, लेकिन जब ज्ञान में आते हैं तो थोड़ी दिनों के बाद लगता है कि अरे हम भी कुछ हैं, स्पेशल आत्मा है। कल ऐसे ही घूम रहा था तो पता नहीं माइंड में क्या खुरापाती चलते रहता है। जहाँ चाय बनाते हैं ना, वहाँ पे उसके नीचे एक पेपर रखा रहता है, पेपर का रैक है। मैं सोचा आज यहाँ से एक पेपर लेते हैं, उसका कुछ बनाएंगे। वहाँ गया तो एक ग्रीटिंग कार्ड देखा, ग्रीटिंग कार्ड निकाला, उसमें क्या लिखा था वो तो मालूम नहीं, लेकिन उसमें एक जैसे नक्की लेक पे बनवाते हैं ना लकड़ी का, नहीं लकड़ी का कुछ नेम प्लेट, ऐसे उसमें एक माना प्लेट बना के लगाया हुआ था, किसी फॉरेनर ने दिया होगा या फिर किसी ने बनवाया होगा, उस पर लिखा था यू आर स्पेशल। तो पता पड़ा आज हम भी स्पेशल हैं। फिर मैं वो लेके गया रूम पे, मेरे पास एक भाई आया, मैं पूछा भाई ये देखो ये क्या लिखा है, बोलता है ये क्या लिखा है, तो बोलता है यू आर स्पेशल। वो तो मुझे पता है कि मैं स्पेशल हूँ, लिखा क्या वो तो बताओ ना, तो वो फिर भाग गया। माना मुझे छोटी छोटी बातों में भी उससे क्या प्राप्ति हो रही है उसको देखना है और उससे प्रसन्न रहना है, क्योंकि जब तक हम मेरे में प्राप्ति नहीं होगी ना तो प्रसन्नता नहीं होगी। खुशी अलग चीज़ है, प्रसन्नता अलग चीज़ है, खुशी क्षणभंगुर होती है, और या फिर यूं कहे कि वो अंदर की चीज़ है, वो दिखती नहीं है, उसको दिखाने के लिए हम जो करते हैं ना वो प्रसन्नता है, वो चेहरे पे दिखता है, वो खुशी इंटरनल है, प्रसन्नता एक्सटर्नल है। आज बाबा ने कहा कि हम बाप को याद करते हैं, लेकिन जब हम एक बाप दूसरा न कोई इस विधि से याद नहीं करते हैं तो फिर बाबा से प्राप्ति तो होती है, लेकिन उतना नहीं होती है जितना होनी चाहिए, क्योंकि हम दिल तक नसीन नहीं बन पाते हैं। जब हम दिल तक नसीन बनते हैं तो सर्व प्राप्तियां होती रहती है और बाप के समीप का अनुभव होते रहता है। ओम शांति। ज्ञान में क्यों आए इसका तो मेरे पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि मैं कितना तीसरा चौथा क्लास में होऊंगा। जब मैं स्कूल में था तो शाम के समय 3-4 बजे क्लास में छुट्टी होती है तो कैसे बच्चे बढ़िया बिस्तर लेके भागते हैं, वैसे मैंने समेटा नहीं, जो मिला जैसे मिला लेके भागा। घर गया, घर में देखा एक टीचर बहन आना कुछ सुना रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो रूम में फेंक दिया और मैं चुपचाप जाके सुनने लगा, पीछे बैठ के सुनने लगा कि क्या सुना रहे, क्योंकि वो वाइट ड्रेस में थी तो मुझे लगा कुछ नया सुनाएंगे, कुछ स्पेशल होगा, अब बच्चे हैं क्या है मालूम नहीं, पीछे जाके बैठ गया। जब बैठा तो मुझे सुनाया, क्या सुनाया वो तो याद नहीं, लेकिन जो सुना वो अच्छा लगा। कल हो के दीदी बोलती है आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना, मैं बोला जी दीदी जो करना है सब करेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है खेलने का ज़्यादा मन होता है तो स्कूल जाने से कम छुट्टी मिलेगी, लेकिन दीदी बोलती है नहीं स्कूल पूरा करके फिर करना। ठीक है, स्कूल से होके फिर आए, दीदी ने फिर जिस स्कूल में हम क्लास करते थे मना पढ़ने जाते थे उसी स्कूल में दीदी ने प्रदर्शनी भी लगाई थी, वहाँ गए माइक्रोवेव से वो भी सब किया तो मैंने उससे खुशी मिलती गई। फिर कुछ दिन के बाद झंडारोहण हुआ, झंडारोहण करके दीदी चली गई, फिर वहीं पे दूसरी आंटी थी वो मुरली सुनाती थी, मुरली सुनते सुनते कैसे अंदर गया क्या गया हमको मालूम नहीं, लेकिन वो जाते जा रहा और वो अपना काम करते रहा। कुछ दिन के बाद माने कुछ सालों के बाद जब हम बड़े हुए तो इसमें रुचि बढ़ते रहा तो यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर पता पड़ा कि एक भाई के पास मुरली है, क्योंकि जो आंटी मुझे मुरली सुनाती थी वो भी ज्ञान में चलना छोड़ दिया। तो फिर भाई अब क्या करना है, तो पता पड़ा कि वहाँ पे एक भाई है उसके पास मुरली रहती है। मैं साइकिल से गया उनके पास मुरली लेने के लिए, उनके पास करीब 10 साल पुराना मुरली था। मैं बोला चलो कुछ नहीं, ना से कुछ तो मिला, मैं लेके आया और उसी मुरली को कम से कम 10-15 बार तो पढ़ता ही होगा, एक मुरली को 1 महीने तक चलाता था। धीरे 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 करके जब मैट्रिक किया तो उसके बाद मैं शहर में आए, समस्तीपुर नहीं बिहार, जब शहर में आए तो ट्यूशन करने जाते थे तो वहाँ पे सेंटर का पता पड़ा तो वहाँ पे जाते थे फिर मुरली सुनने के लिए। लेकिन मुरली तो सुनते थे, पढ़ाई भी करते थे, लेकिन पता नहीं कि उसमें रुचि बढ़ते रहा। अब एक समय ऐसा आया कि अभी क्या करना है, खुद को डिसीजन लेना है। फिर मैं सेंटर पे गया, योग कर रहा था तो एक भाई ने आया और क्या किया कि वो बोला भाई ऐसे में तेरा भविष्य खराब हो सकता है इसलिए तू पढ़ाई कर। मैं बोला ठीक है मैं पढ़ाई करने जाता हूँ। फिर दीदी का फोन आया कि अभी सेवा में आना है, मैं पढ़ाई करूँ या सेवा करूँ, ठीक है पढ़ाई पूरा करके सेवा भी किया फिर आ गया। तो इसमें क्या है कि मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, फिर मैं सोचा चलो कुछ दिनों के लिए सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे रहेंगे सेवा भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि भागदौड़ उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है सेंटर पे गया और वहाँ पे सेवा भी करते थे और साइड से पढ़ाई भी करते थे, दोनों अच्छे से चल रहा था। कुछ दिन के बाद दीदी ही बोलती है कि देखो यहाँ पे सेवा ज़्यादा होती है और अभी आप ग्रेजुएशन करने के पास में हो, ग्रेजुएशन में पढ़ाई करना होता है और उसमें पूरा पढ़ाई करना होता है, थोड़ा भी हम मार्जिन देंगे तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे और सेवा तो आज नहीं तो कल चलती रहेगी, लेकिन आप पढ़ाई पूरा कर लो। मैं बोला जी दीदी। मैं घर गया पढ़ाई करने, 1 साल मुश्किल से किया होगा, लेकिन वो जो सेंटर की जी वो खिंचावट थी ना वो कम नहीं हो रही थी। मैं बोला भाई ये क्या हो गया, पहले नहीं जब नहीं था तो कुछ नहीं होता था, अभी रह के आया तो मुश्किल हो रहा है। मैं 1 साल पढ़ाई किया, 1.5 साल पढ़ाई किया, फिर आया बाबा मिलन। बाबा मिलन में मैं आया और दीदी को बोला दीदी मैं यहाँ 1 मास सेवा में रुकना चाहता हूँ। दीदी बोला नहीं। मैं सोचा भाई अब क्या होगा, अब तो पत्ता ही कट गया, लेकिन फिर गया घर वापस, पढ़ाई पूरा किया, और जिन्होंने मुझे क्लास कराया था उनको खोजा कि वो किधर है, तो वो पता पड़ा कि वो जयनगर के पास है। फिर मैं उनके पास गया, उनको बोला दीदी ऐसा है कि सेवा में जाना है, तो दीदी ने दीदी ने पहले नाकर नुकुर की, उसके बाद 15 दिनों के लिए छुट्टी दिया था उन्होंने। फिर मैं यहाँ आया सेवा में, तो एक भाई बोलता है भाई तू रिलैक्स रह, 15 दिन की छुट्टी मिल गई ना उसी में खुश रह, उस 15 दिन को 4 मास बनाना तेरे हाथ में। मैं बोला चलो बढ़िया है, ये तो अच्छा आइडिया बता दिया। लेकिन मैंने देखा वो सेवा तो एक माध्यम है, जब मैं यहाँ आया तो मेरा व्यू नहीं था कि हम सेवा में जा रहे हैं, मुझे ज्ञान योग करना है और इतना अपने को परिपक्व कर देना है कि सामने से कैसा भी तूफान आए, साइक्लोन आए, मुझे हिला ना सके, मुझे ऐसा बनना है। ठीक है, फिर मैं क्या किया कि यहाँ आने के बाद कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 1:30 बजे भी उठता था मृत वेले, लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि मुझे नींद बहुत आती थी। फिर एक भाई ने बोला कि कुछ नोट्स दिया, वो बोला वो पढ़ो। मैं बोला ठीक है मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ाई किया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, किसी ने बोला खाना छोड़ दो वो किया वो भी कुछ नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ बोला माना जो बोलता गया मैं करते गया, हुआ कुछ नहीं। फिर एक भाई ने बोला कि ऐसे नहीं होगा, आप चेक करो कमी कहाँ हो रही है। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। फिर एक दिन गया गार्डन में जाके सो गया चुपचाप, बिस्तर वगैरह कुछ नहीं लगाया, ऐसे लेट गया और आसमान को देख रहा। तो मैं सोचा भाई जरूर कहीं कमी है, या तो मुरली पढ़ के नहीं सोते हैं, या फिर अमृत वेले ढंग से नहीं, माना अमृत वेले उठने की इच्छा नहीं होती, या उठते हैं तो सोचते अरे नींद तो आती ही है, माना उठ के क्या करेंगे, इसलिए फिर सो जाओ बाद में उठ के करेंगे। तो वो सारे एक एक पॉइंट को नोट किया और उसको ख़त्म किया, तो पता पड़ा कि हाँ अमृत वेले अच्छे से जा रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 4 से 4:45 का जो टाइम होता है ना, उस टाइम नींद बहुत आती थी, मैं चुपचाप जाके सो जाता था। लेकिन एक भाई बोला नहीं उस टाइम क्या करो, जाके आप वॉकिंग करो, कुछ करो, मुरली पढ़ो। ठीक है, किया तो नहीं मल हाँ जी बोल के आ गया। ओम शांति। फिर मैं ऐसे करते करते 1.5 मास हो गया, 2 मास हो गया, उधर से दीदी का फ़ोन नहीं आया। मैं बोला जब तक फ़ोन नहीं आया तब तक अपने को क्या जाता है, बाप बिठाया है, बाप खिला रहा है, पहना रहा है, करते रहो। 1.5 मास हुआ, 2 मास हुआ, 3 मास हुआ, दीदी को तो कुछ नहीं हुआ, घर वाले को खुजली होने लग गई। वो बोलता है भाई कहाँ चला गया जल्दी आ। मैं टालता रहा या ठीक है 10 दिन के बाद आता हूँ, 15 दिन के बाद आता हूँ। आखिरकार लौकिक चाचा जी है उन्होंने शरीर छोड़ा, तो फिर उनमें जाना पड़ा, उसमें गए करीब 1 मास 1.5 मास रहे होंगे। लेकिन मधुबन की बहुत याद आ रही थी उस टाइम, इतनी कि बात मत पूछो। फिर मैं क्या करूँ, मैं बोला, मैं दीदी को बोला दीदी मुझे सेवा में जाना है, बोलती अभी तो आया है। मैं बोला दीदी वो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे जाना है। ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने फिर माँ से बात किया, तो माँ बोलती है नहीं अभी नहीं जाना है। मैं फिर बाबा को बोला बाबा कैसा भी करके मुझे जाना है, कैसे जाना है वो आप जानो, क्योंकि कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम अगर मधुबन आते हैं तो उसके लिए भी लेटर चाहिए, माँ बाप का परमिशन चाहिए, घर से फ्री भी होना चाहिए, कोई जिम्मेवारी हो तो भी हम नहीं आ सकते। मैं देखा अभी कोई जिम्मेवारी तो है नहीं, पढ़ाई पूरा किया है, जॉब करना है, उससे पहले मधुबन से हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो जब उस दलदल में फंसेंगे तो कब निकलेंगे कैसे निकलेंगे पता नहीं है। मैंने ऐसे दीदी को बोला, तो दीदी ने छुट्टी दिया और फिर हम भेजा आने के लिए। तो उस टाइम आया, तो फिर जब आया उसी टाइम संकल्प कर लिया नहीं अभी अब नहीं जाना है। तो फिर सेवा किया, 6 मास किया, 9 मास हो गया, घर वाले फ़ोन पे फ़ोन कर रहे कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। ठीक है आएंगे लेकिन ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, फिर वापस हम आ जाएंगे। बोला ठीक है कोई नहीं लेकिन आना पड़ेगा। मैं ठीक है गया घर, 1 मास के लिए छुट्टी लेके गया था, लेकिन मुश्किल से 10 दिन रहा होगा, 10 उसके 20 दिन तो सेंटर पे ही रहा मैं, फिर वापस आ गया, तब से इधर ही है। ओम शांति।